हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के द्वारा उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजनीय बनाया। और ये प्रश्न हमारे सामने कि भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है, पिछले रविवार हमने इसके संबंध में एक और प्रश्न लिया था, क्या भगवान की नजरों में पूजनीय होना अच्छी बात है। हम यदि हमारा मनुष्य जीवन देखें तो मनुष्य जीवन की जो जरूरतें हैं, हमारी भौतिक जरूरतें पूरी होने के पश्चात ये जो सूक्ष्म स्तर पर रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, तो हमने महाभारत से अर्जुन का उदाहरण लिया था। जब जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रण ले लिया और अर्जुन के प्रण लेने के पश्चात अर्जुन के परम सखा साक्षात भगवान वो व्याकुल हो गए। और ये कथा है जब भगवान के ही सहायता से, उनकी कृपा से अर्जुन जयद्रथ के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, तो भगवान ने अर्जुन को सारा श्रेय दिया और अर्जुन का गुणगान किया, अर्जुन को बधाई दी और बहुत एक विशेष प्रार्थना, याचना अर्जुन ने भगवान से की। ओ कृष्णा, लेट मी ऑलवेज बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंग्रेचुलेशन, कि हम हमारा जीवन इस प्रकार का बिताएं, हर एक क्षण, हर एक दिन, हर एक महीना, साल, कि भगवान हमें देखते हुए हमें बधाई देते रहे और वही हमारी सुरक्षा है। तो हम भरत, इनका चरित्र देख रहे हैं रामायण से। भरत ये एक ऐसे पूजनीय कि स्वयं प्रभु श्री राम ने भरत को अपने से ऊंचा माना। और जो रामायण के इतने टीकाकार हुए हैं उन्होंने भी भरत से जो शिक्षाएं ली हैं वो शिक्षाएं इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी हैं कि वो कहते हैं यदि हम रामचंद्र जी के चरित्र की गणना करें तो सैकड़ों राम को मिला दें तो एक भरत होते हैं। हमने ये दो उदाहरण लिए थे भरत के संदर्भ में। तो रामायण में जो चार भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये हमारे जो बाह्य शत्रु हैं और आंतरिक शत्रु हैं, इनका प्रतीक हैं। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर निकल पड़े और अब ये प्रयाग से होते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं, तो जो वन गमन बताया गया है इनका, जिस तरीके से ये चल रहे थे हर एक वनों में, वो बहुत विशेष है। तो पिछले दफा हमने ये शिक्षाएं ली थी। दशरथ वो वियोग में, प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण खो बैठते हैं और वो हमें सिखाते हैं रियल लव इज टेस्टेड इन सेपरेशन फ्रॉम द बिलेवड। भरत हु इज हैविंग अ वेरी हॉरिफिक ड्रीम, अ नाइटमेयर। वेर इज भरत? भरत कहां पर है? कई कई देश में, अपने नौनिहाल में है। purity is directly proportionate to sensitivity. Which Ram of Ramayana do you prefer? और मेरे ख्याल से ये पिछले हफ्ते हमारा आखिरी स्लाइड था. Serving Krishna even though imperfectly is far better than serving Maya perfectly. ये प्रसिद्ध एक पास टाइम श्रील प्रभुपाद का एक व्यक्ति, वो प्रभुपाद से मिलने आया और शिकायत लगाने लगा कि ये आपके शिष्यों को मैं देखता हूं कि आपके क्लासेस में ये सोते रहते हैं हर समय. दे आर ऑलवेज स्लीपिंग इन योर क्लासेस. तो प्रभुपाद ने तुरंत उनके लाइन का ये जो वर्ड है इसको पकड़ा. प्रभुपाद ने कहा ऑलवेज. ऑलवेज का अर्थ क्या हुआ? हर समय, हरदम सोते रहते हैं. यदि हरदम सोते रहते तो अपना जीवन पूरा बलिदान कैसे करते हो? तो उसने फिर अपने लाइन को करेक्ट किया. 95% ऑफ द टाइम दे स्लीप. तो प्रभुपाद ने कहा विच मीन्स 5% दे आर अवेक, बट इन योर केस यू आर 100% एबसेंट. वॉट वॉज प्रभुपाद ट्राइंग टू हिंट? इवन दो दे आर इम्परफेक्ट बट दे आर सिंसियर. We cannot become perfect, but we can become perfectly sincere. On the other hand, someone who is perfect in his mic activities, trying to please Maya, is nowhere considered in the list of the Lord's mercy. तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखना चाहेंगे कि वशिष्ठ मुनि ने अयोध्या के जो सबसे उत्कृष्ट दर्जे के गुप्तचर, उनको कहां भेजा? भरत को बुलाने के लिए. समाचार देने नहीं, भरत को बुलाने के लिए. और समाचार फिर वशिष्ठ मुनि देने वाले थे. तो उत्कृष्ट दर्जे के गुप्तचरों को चुना वशिष्ठ मुनि ने. यह इसलिए चुना कि भरत ये देख ले कि इस बार एक तो मुझे बुलाया जा रहा है और बुलाने के लिए सबसे हाई क्लास मैसेंजर्स को भेजा है. तो केवल वशिष्ठ मुनि जानते थे कि भरत बहुत बुद्धिमान है, ऐसे गुप्तचरों को देखकर समझ जाएंगे मामला गंभीर है. क्या समझ जाएंगे? मामला गंभीर है. कोई साधारण बात होती तो साधारण गुप्तचरों को भेजते, परंतु बात असाधारण है इसलिए असाधारण गुप्तचरों को भेजा है. अब वर्णन है कि ये जो निकले, ये मैसेंजर्स जो अयोध्या से निकले, रथ पर आरूढ़ हुए, तो इनकी जर्नी बताई है, इनकी यात्रा अयोध्या से कई कई देश तक की यात्रा. अब देखिए, ये लोग केवल कोई नौकरी पेशावर नहीं थे कि इनको वेतन मिलता है इसलिए अपना काम मैकेनिकली करते थे। ये सब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। साधारण से साधारण कोई प्रेषक भी अयोध्या का, वो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। तो ये सब अपने हृदय में एक बोझा के रूप में लिए हुए, क्या किसको लिए हुए कि क्या हुआ है अयोध्या में और इनको चुना गया है भरत को लाने के लिए, क्योंकि मुख्य किरदार तो भरत का है। अब भरत के वजह से ही तो ये पूरा बवाल हुआ है। कई कई ने भरत के लिए ही तो ये सब कुछ किया। अब देखिए इनकी मनस्थिति बताई है, इन मैसेंजर्स की मनस्थिति बताई है कि रथ पर ये निकले हुए रास्ते में ये सोच रहे हैं अभी अभी पास्ट में अयोध्या में क्या हुआ, पूर्व काल में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ है। और इसके साथ साथ इनके मन में एक और विचार वो भी दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ दौड़ रहा है, इनका मनोरथ भी दौड़ रहा है। अच्छा घोड़े वो भी राम के भक्त हैं, वो भी साधारण नहीं हैं। तो घोड़े जो हैं वो इस दुविधा मन स्थिति में कि क्या होगा, भरत जब लौटेंगे तो क्या होगा, क्या भरत अपनी मां कैकेयी के षड्यंत्र से खुश होंगे या वो हमारी तरह दुखित हो जाएंगे। तो घोड़े ये सोचकर वो अपने काबू में नहीं थे और रथ पर ये जो गुप्तचर ये भी अपने काबू में नहीं थे। क्यों? क्योंकि मन में दोनों के दो प्रकार के विचार चल रहे हैं, एक अतीत को लेकर जो हुआ और एक भविष्य को लेकर क्या होगा। आज हमारी चर्चा इसके ऊपर ही है। मैसेंजर्स फ्रॉम अयोध्या, व्हाट डू दे टीच? व्हेन वन एक्सपीरियंसेस अ ड्रेडफुल पास्ट एंड एंटिसिपेट्स अ ग्लूमी फ्यूचर, देन द प्रेजेंट माइंड रेसेस लाइक वाइल्ड हॉर्स। फिर से पढ़ना होगा आपको। ड्रेडफुल पास्ट, भयावह अतीत, ग्लूमी फ्यूचर, अंधेरे से भरा हुआ भविष्य, और इन दोनों के बीच में है हमारा वर्तमान। हम सब के जीवन में हम इसका अनुभव करते हैं। हम सब के जीवन में हमारे अतीत में कुछ ऐसी भयावह चीजें गुजरी हैं। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ है। हो सकता है कि यहां आने से पहले आज सुबह ही कुछ हो गया हो, या कल, या पिछले हफ्ते, पिछले महीने, सम ड्रेडफुल पास्ट एंड देन ग्लूमी फ्यूचर। और हमारा मन ये दोनों के बीच में अभी वर्तमान स्थिति में जूझ रहा है, हमारे अतीत और हमारे भविष्य से, हमारा वर्तमान का मन। इसलिए हमने हमारे इस मन की तुलना पेंडुलम से की है। आपने ये घड़ी देखी होगी जिसके पेंडुलम होते हैं, और ये पेंडुलम की विशेषता क्या है कि ये हर समय एक्सट्रीम्स में जाता रहता है। ये एक्सट्रीम से लेके ये एक्सट्रीम, यदि पेंडुलम बीच में रुक जाए तो घड़ी बंद है समझ लेना चाहिए। तो ये हमारा माइंड कैसा है, इस पेंडुलम के समान है, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इसके विषय में बताया है, तदैवम आत्मन्यवरुद्ध चित्तो नवेद किंचित बहिरंतरम वा यथेषु कारो नृपतिं व्रजन्तम् ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। ये उदाहरण है, ईशकार, एन एरो मेकर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक राज्य में वो राजा के लिए तीर को धार लगा लगा कर दिया करता था, यही उसका काम था, व्यवसाय था इसका, ईशकार इसको कहते हैं, एरो मेकर। तो 11वें स्कंद में ये प्रसंग है जब अवधूत ब्राह्मण ने 24 गुरु अपनाए और इन 24 गुरुओं में से ये ईशकार एक गुरु था। तो क्या उन्होंने सीखा इस ईशकार से, एरो मेकर से? उन्होंने एक दिन देखा कि ये अपने वर्कशॉप में, कारखाने में तीरों को धार लगा रहा है और उसी समय नृपतिम, वहां का राजा, वो निकला सड़क से, उसकी दुकान के बाहर की जो सड़क है वहां से राजा निकल रहा है और राजा अपनी टोली के साथ निकला, हाथी पर विराजित, घोड़े और ढोल इत्यादि बज रहे हैं, राजा का गुणगान हो रहा है और राजा इतने शोर शराबे में निकल रहा है। परंतु अवधूत ब्राह्मण ने देखा कि ये ईशकार, इसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसके कार्य से, वो जो तीर को धार लगा रहा है उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए श्लोक में कहा गया है, तदैवम आत्मन्य अवरुद्ध चित्तो, उसका चित्त बिल्कुल भी किसी अवरोध का शिकार नहीं बना। न वेद किंचित बहिरअंतरम वा, उसे पता भी नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है या अंदर क्या हो रहा है, अर्थात उसके आंतरिक विक्षेप उसे विक्षेपित नहीं कर सके और बाहर राजा की टोली उसे विक्षेपित नहीं कर सकी। ये था उसका कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता इस ईशकार। तो अवधूत ब्राह्मण एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन सीखते हैं। व्हाट इज दैट? द पावर ऑफ नाउ। वर्तमान में हम कितने मौजूद हैं, शरीर नहीं हमारा मन। जैसे ही हमें हमारे शारीरिक कार्य बंद करने पड़ते हैं तो हमारा मन जो है वो कार्यशील होता है, जैसे कि इस समय। ऐसे जो समय होते हैं जहां पर शारीरिक कार्य कम से कम है, क्या मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, एक केवल जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय मेरी चल रही है, आंखें आप लोगों को देख रही है, आप लोगों के संदर्भ में आप लोगों की भी दो इंद्रिय, एक कान और ये आंखें, है ना। अक्सर आंखें जो हैं वो कम काम करती हैं कुछ समय बाद, और जब आंखें कम काम करना शुरू करती हैं एज अ ऑडियंस, तो धीरे धीरे फिर कान भी कम काम करना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक विद्यार्थी सो रहा था क्लास में, सोए जा रहा है, टीचर ने चिल्ला कर उठाया उसे, शर्म नहीं आती, सुबह सुबह 8 बजे तुम सो रहे हो क्लास में। तो हड़बड़ा कर उठा, टीचर से कहता है, सर आपकी वाणी इतनी मधुर है, आप इतना मीठा बोलते हो कि कोई कैसे रोक सकता है बिना सोए, इतना मीठा बोलते हो। तो खुश हुआ थोड़ा सर सुनकर, लेकिन फिर वो पूछता है, तो बाकी क्यों नहीं सो रहे? वैलिड क्वेश्चन था, मेरी वाणी तो सबके लिए समान है, पूरी क्लास के लिए सबके लिए समान है मेरी वाणी, तुम ही क्यों सो रहे हो, बाकी क्यों नहीं सो रहे? ये कहता है, सर वो लोग ठीक से सुन नहीं रहे। तो क्या कह रहा था कि मैं ठीक से सुन रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी कि यदि मुझे नींद भी आ रही है तो मान लेना चाहिए कि मैं ठीक से सुन रहा हूं। तो ये जो अयोध्या के मैसेंजर्स ने ये अनुभव किया, ड्रेडफुल पास्ट, ग्लूमी फ्यूचर, रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब्ड प्रेजेंट। अब देखिए, हम लोग जो ये बैगेज लेके जीते हैं, कौन सा बैगेज? शरीर का नहीं, शरीर का इतना नहीं होता है, जितना सूक्ष्म शरीर का इतने जन्मों से अलग अलग प्रकार के सामान, उसमें से कुछ न कुछ, जैसे होता है ना कि कई सामान हमारे घरों में कई सालों से हम उसे संजो के रखते हैं, उसे खोने नहीं देते, वैसे ही कई जन्मों के कई ऐसे इंप्रेशंस हम हमारे इस अटैची में, कौन से, मन की अटैची में ले लेकर हर एक योनि में घूमते फिरते रहते हैं। जैसे मुझे याद है, बहुत साल पहले लंदन के पांडव सेना का एक विद्यार्थी, जैसे हमारा आईवीएस ग्रुप है वहां पर पांडव सेना है, तो पांडव सेना का एक मेंबर वो ट्रीटमेंट के लिए आया था बॉम्बे। तकलीफ क्या थी उसे? कि उसे रात में नींद नहीं आती थी, बहुत ही भयावह उसे कोई सपने आते थे हर दूसरे तीसरे दिन, और ऐसे भयावह सपनों के वजह से उसकी नींद उड़ जाती थी, फिर रात भर उसे नींद नहीं आती थी। तो अलग अलग उसने इलाज ट्राई करे, लंदन में कुछ नहीं हुआ, फिर वो बॉम्बे में आया तो एक होम्योपैथ, एक फेमस होम्योपैथ के पास गया, तो उस होम्योपैथ ने इससे एक प्रश्न पूछा कि तुम जो तुम्हारे इन सपनों में देखते हो, जो भी चित्र या दृश्य तुमको दिखते हैं जिसके वजह से तुम डर के मारे उठ जाते हो, ऐसी कुछ चीज तुमने कॉन्शियसली देखी थी कभी तुम्हारे पास्ट में, अतीत में? क्योंकि जो भी कुछ हमारे सपनों में अगर हमको दिखता भी है, उसका हमने कुछ एक्सपीरियंस पास्ट में किया है। आप यदि सपने में देख रहे हो कि आप उड़ रहे हो, आप बोलोगे मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस जन्म में बिना प्लेन में बैठे उड़ते हुए का, तो हाँ पिछले कुछ ऐसे जन्म होंगे जिसमें हम पक्षी रहे होंगे, तो उसका इंप्रेशन अभी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हमारे मनुष्य शरीर के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इस होम्योपैथ ने इससे पूछा लड़के से, तो इसने याद किया, और फिर जिसको कहते हैं ना, ही वेंट डाउन हिज मेमोरी लेन, तो मेमोरी लेन में जाते हुए उसे याद आया कि कुछ 15-17 साल पहले उसने कोई हॉरर मूवी देखी थी, और ये हॉरर मूवीज इस प्रकार से बनाते हैं कि जो लोग उस समय देखने जाते हैं, कईयों को वो देखने के बाद प्रॉब्लम शुरू होता है, और उनको पता है कि ये भूत प्रेत की पिक्चर जो मैं देखने जा रहा हूं उसके बाद प्रॉब्लम होगा जब रात को उनको प्यास लगती है ना। टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसा ही सीन होता है, रात को प्यास लगी और कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, फ्रिज ग्राउंड फ्लोर पे है। और ये भूत भी विशेष प्राणी होते हैं इन पिक्चरों के अंदर कि जब तक वो व्यक्ति पीछे नहीं मुड़ता ये लोग अटैक नहीं करते। पता नहीं क्या इनका माइंडसेट होता है, वेट करते हैं, पीछे मुड़ा कि फिर अटैक शुरू होता है। तो ये कोई ऐसी मूवी देखकर फिर बाद में जब अकेला उसे और फिर उसको रात को ही प्यास लगती है, चाहे वो कितना 8 लीटर पानी पी के सोया हो, रात के 3 बजे प्यास लगेगी। और उस समय उसे चाहे उस घर में 20 साल से रह रहा हो, उसको बत्ती नहीं समझ में आएगी कहां पर है ऑन करने के लिए। तो इस बंदे ने ऐसी ही कोई हॉरर मूवी देखी थी 15 साल पहले जिसके इंप्रेशंस ड्रेडफुल पास्ट इसको 15 साल तक सता रहे थे। हाउ पावरफुल दिस माइंड एंड इट्स इंप्रेशंस आर। तो ड्रेडफुल पास्ट, और ये तो केवल उसने कोई एक मूवी देखी, कई बार भयावह चीजें रियलिस्टिकली होती है, रियल लाइफ अगर हॉरर मूवी बन जाए किसी की, और हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ भयावह हुआ है हमारे अतीत में, कुछ ना कुछ। हम सब एक एक को अगर माइक दें तो यहां पर मूवी बन सकती है आप लोगों की, और सब उत्साही हो, अरे मेरी सुनो प्रभु, आप क्या इनकी सुन रहे हैं, मैं बताता हूं मेरे साथ क्या बीता है, आप बीती सब बताना शुरू करेंगे। जैसे हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हैं बद्री नारायण महाराज, वो एक बार बता रहे थे कि अमेरिका में ऐसे कई लोग जॉब्स पर हैं, लाइफलाइन कॉल्स अटेंड करते हैं। लाइफलाइन कॉल्स क्या होती हैं? जब कोई आत्महत्या करने के लिए बालकनी तक पहुंच गया है और वो सोचता है कि मरने से पहले मैं ये लाइफलाइन कॉल कर लूं, तो ऐसे जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स उठाते हैं सबके, कॉल सेंटर, हाँ, तो ऐसे ये कॉल सेंटर होते हैं। लेकिन ये कॉल सेंटर किसके लिए होते हैं? जो आत्महत्या करने जाने वाले हैं, बस अभी कूदने ही वाले हैं, पूरा वो कंगरी पर आ गए हैं टेरेस के या बालकनी के, फिर वो लोग एक कॉल करते हैं। तो ऐसे ये बद्रीनारायण महाराज कुछ समय के लिए वो जॉब कर रहे थे, ये वाला कॉल्स रिसीव करना, किसके, सुइसाइडल पीपल उनके कॉल्स रिसीव करना। तो उनको एक बार ऐसे कॉल आया, तो इनके पास स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चंस पूछना ताकि उसको बचा लें, वो उनको कुछ काउंसलिंग दे के सांत्वना दे के बचा लें। तो इनको ऐसे कॉल आया, तो इनके पास स्टैंडर्ड लिखा हुआ था क्या क्या पूछना है। अरे कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचो। तो इन्होंने पूछा स्टैंडर्ड फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। तो इसने आंसर दिया, पेरेंट्स पेरेंट्स दे लेफ्ट मी व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड, आई डोंट इवन नो हु दे आर वेयर दे आर। तो क्रॉस हो गया, पेरेंट्स तो है ही नहीं। थिंक अबाउट योर वाइफ, वाइफ शी इज विद समवन एल्स। एनी गर्लफ्रेंड, नो वे आई एम गोइंग टू टेक रिस्क। किड्स, कोई बच्चे, नो किड्स, बच्चे ही नहीं हुए कभी। माँ बाप नहीं है, बीवी छोड़ के चली गई है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई भाई बहन कोई नहीं, अकेला ही पैदा हुआ मैं। तो ये देख रहे हैं कोई कुछ तो तिनखा मिले पकड़ने का, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फाइनली, व्हाट अबाउट योर जॉब, जॉब आई एम जॉबलेस सिंस पास्ट टू ईयर्स. कोई जॉब नहीं है, घर नहीं है, माता पिता नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, भाई बहन नहीं, कुछ भी नहीं. तो बद्री नारायण महाराज सोच रहे थे, इसको पूछे तू भाई कौन से बालकनी में है, मैं ही तेरे को धक्का देता हूं आके. आई विल गिव यू अ पुश. बाकी क्या रह गया तेरे पास जीने के लिए, कुछ भी नहीं है तेरे पास. कई बार जब ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो उनको भी कुछ लोग समाज के ऐसे बोलते हैं, अरे नौकरी नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवी नहीं, प्याज लहसुन जो था वो भी छोड़ दिया, चाय कॉफी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया. अरे तो तू तो फिर जिंदा मुर्दा है. सो व्हेन वी आर कॉट अप, द प्रेजेंट इज कॉट अप बिटवीन ड्रेडफुल पास्ट एंड ग्लूमी फ्यूचर, देन द माइंड रेसेस लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, ये घोड़े जैसे दौड़ रहे थे. सो अवर माइंड वेरी ऑफन ड्राइव्स वेरी यूनिक BMW. B stands for blaming, M stands for mourning, W stands for worrying. बहुत स्पेशल मॉडल है BMW का, ये माइंड के लिए बनाया है स्पेशली BMW कंपनी ने. तो अक्सर हम जब इनके बीच में अटके रहते हैं, ये पास्ट, ऐसा अतीत और ऐसा भविष्य, तो हमारा जो वर्तमान मन है वो ऐसी BMW को ड्राइव करता है. एक बार एक पति चक्कर खाकर बेहोश गिर गया, तो पत्नी अपने बेहोश पति को डॉक्टर के पास ले जाती है और चिंतित डॉक्टर को कहती है कि पता नहीं इनको क्या हुआ, चक्कर आया और बेहोश गिर गए, बहुत पानी वानी डाला, नहीं होश में आ रहे थे. तो डॉक्टर ने चेक किया, नब्ज चेक करी, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक किया, फिर डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स डाले उनके मुंह में और कहे कि 15-20 मिनट लगेगा, होश में आ जाएंगे, तब तक मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, आप लिख लो, फ्यूचर में ऐसा नहीं हो. तो पेन पेपर दे दिया पत्नी को, लिख लो क्या प्रिस्क्रिप्शन है. अब से जब भी ऑफिस से आपके पति घर आए तो आपको ये सब कुछ करना है, आपको झगड़ा नहीं करना है. You should not fight with your husband. Don't argue with your husband. ऐसे एक एक करके उसको बोल रहे हैं, लिखो लिखो पेपर पे लिखो. तो लिखते जा रही है, Stop fighting, stop arguing, stop using WhatsApp and Facebook, stop seeing those serials, सास बहु, Stop, you know, ordering food from outside. Cook for your husband. Be always very polite, courteous. ऐसे करके लंबा चौड़ा लिस्ट पत्नी ने लिख दिया सब कुछ. अब पति होश में आए फाइनली, तो पत्नी अब बोल रही पति को, चलते हैं घर चलते हैं. तो पति अभी क्यूरियस हुआ क्या था, डॉक्टर ने क्या बोला. तो रास्ते में पति पूछता है, तो क्या डॉक्टर ने क्या बोला. पत्नी कहती है, डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है. तो कई बार हम खुद BMW में होते हैं और कई बार जो हमारे परिवार वाले होते हैं वो भी अपनी अपनी BMW चला रहे हैं. अब सोचो कि अगर घर में 6 सदस्य हैं तो 6 BMW चल रही हैं और कौन सी, ये वाली, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फ्लो चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि जब हम अपने वर्तमान मन को इस दुविधा स्थिति में पाते हैं, चिंता के अंदर पाते हैं, और चिंता किसके वजह से, कोई ना कोई समस्या, सम प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो आप यहां पर पढ़ रहे हो क्या है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ऑब्वियसली बहुत कम होंगे जो नो पर जाएंगे। तो अगर आप नो पर गए, जो लेफ्ट साइड में नो पर गए, तो बहुत सिंपल इसका आगे का फ्लो है, व्हाई यू वरी। इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम तो फिर चिंता किसकी कर रहे हो। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड योर आंसर इज येस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, कुछ कर सकते हो। अब इसमें भी आप देखो दो है, येस और नो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसको सॉल्व करना, तो फिर व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हो। एंड यस, इफ यू कैन सॉल्व फिर चिंता क्यों कर रहे हो। तो हर तरीके से आप अगर समस्या में हो तो फाइनली आप कौन से सर्कल पर पहुंच रहे हो, देन व्हाई वरी। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आंसर इज नो, व्हाई वरी। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आंसर इज येस, इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट आंसर इज येस, व्हाई वरी। इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट द आंसर इज येस मीन्स नो, देन व्हाई वरी। आर यू स्टिल इन वरी? आप बोले प्रभु जी इतना आसान होता तो इतने सारे आप लेक्चर प्रिपेयर करते हो चिंता से मुक्त करने का, क्या जरूरत थी। बट हाँ, यदि हम गहराई से सोचें, सोल्यूशन हमारे अंदर ही है, प्रॉब्लम भी हम ही अंदर से शुरू करते हैं और सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही। जैसे मैंने इस बार देखा, मैं इंग्लैंड में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन से जा रहा था, तो ट्रेन लेट थी, तो बहुत से लोग वो लोग पैनिक सिचुएशन में थे, क्योंकि वहां पर ट्रेन लेट होना वो बहुत रेयर फिनोमेना है। इंडिया के अंदर ट्रेन टाइम पर आना बहुत रेयर फिनोमेना है। अगर ट्रेन टाइम पर आ रही तो लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे तक हम तो आराम से निकल रहे थे। तो वहां पर स्टेशन के ऊपर मानो ऐसे अफरा तफरी मच गई। तो मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन से कनेक्टेड है या फ्लाइट कनेक्टेड है, और ये वाली ट्रेन लेट हो रही है, और वो ट्रेन, वो जो भी फ्लाइट या ट्रेन, टाइमिंग बहुत कम है आपके पहुंचने का और उसको पकड़ने का, तो अंदर क्या फिर इमोशन होता है, हलचल, रेस्टलेस। तो मैं देख रहा था कि स्टेशन के ऊपर लोग जब ऐसे मनस्थिति में होते तो समझ में आ जाता है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। सो दे वर पेसिंग बैक एंड फोर्थ स्टेशन में, ऐसे यहां से वहां देख रहे हैं। तो मैं वो सोच रहा था कि स्टेशन में ऐसे घूमने से ट्रेन जल्दी तो नहीं आएगी, बार बार पटरी झुक झुक कर देखने से वो ट्रेन को तरस तो नहीं आएगा, अरे कितना झुक झुक के देख रहे आ जाना चाहिए, बेचारे इतना झुक झुक के देख रहे हैं। तो झुक झुक घड़ी उसका मतलब ये नहीं कि आप झुक झुक के उसको बुलाओ। जैसे लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया फाइनल में है और वो है ना लास्ट ओवर और कुछ रन और ये, कितना वो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब ऐसे वो खड़े हो जाते हैं, बैठेंगे नहीं अभी सोफे के ऊपर, सीट पे बैठेंगे नहीं। कई लोग तो देखते भी नहीं, वो मतलब सुनते हैं खाली, क्या हुआ, देखना नहीं चाहते, पता नहीं क्या हुआ। अगर आउट हो गया, इंडिया हार गई, तो पता नहीं हार्ट अटैक आ, क्या हुआ। ऐसे एक बंदा, वो जब भी इंडिया ऐसी सिचुएशन में आती, फाइनल में लास्ट ओवर है, 6 बॉल 5 रन और जो भी 8 रन ऐसा है, तो वो पूरा क्रिकेट का किट पहन के बैठता था टीवी सेट के सामने, पूरा हेलमेट और वो पैड और ये सब बैठ, तो उसको एक बार पूछा गया, भाई तू तू क्यों इतना परेशान हो रहा, इन केस दे नीड मी, ये आई शुड बी हेल्पफुल। तो देखो ऐसी सिचुएशन हमारी आती है जब हमारी मनस्थिति हमको क्या क्या ऐसे बेढंगे कार्य कराती है, जैसे कि उसके वजह से हमारी चिंता दूर होने वाली। तो इसलिए एंग्जाइटी जो है वो दो कारणों के वजह से होती है। एक है एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी कि हमारा जो बाह्य जीवन है उसमें यदि हम अस्थिरता देखते हैं या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जैसे आप देखो अब वेस्ट में वहां पर एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी बहुत कम है, मतलब आप नल चालू करोगे तो पानी आएगा, यहां पे गारंटी नहीं है कि नल आप चालू करोगे तो पानी आना ही है, चाहे आप वो जैगुआर की नल लगा लो, परंतु गारंटी नहीं है कि हर समय पानी आएगा ही। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने देखा साउथ में एक एयरपोर्ट पर, वहां पर उन्होंने वो आजकल सेंसर के नल होते हैं ना, आप हाथ डालो उसमें कोई वो टोंटी नहीं होती है बंद चालू करने की, आप हाथ नीचे करो नल के अपने आप पानी आता है। तो वो उधर एक सेंसर होता है, वो आपके हाथ को देखता है, जो भी उसके सामने आ गया मतलब उसको पानी छोड़ना है। कई ऐसे एयरप्लेन्स में ऐसे होते हैं तो उसमें आप एक बार दबा दो नल को तो एक मिनट तक पानी आता रहेगा, वो बंद कर अपने आप ऊपर आ जाता है, बंद होता है। तो पहली दफा हम लोग जब जा रहे थे अमेरिका, तो मैं और गोविंद प्रभु थे, तो गोविंद प्रभु आए बोले कि वो नल बंद नहीं हो रही है। तो उनको क्या डर था कि वो शायद पूरा भर जाएगा वो बाथरूम अंदर का, एयरप्लेन का। तो मैंने कहा बंद नहीं हो रही मतलब, बोले वो दबाया उसको कुछ लगाए दिखाई नहीं मेरे को, उसका टेटवा कहाँ है बाकी, उसको बंद कैसे करते हैं। तो मैंने कहा नहीं ब्रो, एक मिनट बाद बंद हो जाता अपने आप। अच्छा ऐसा है। तो मैंने देखा इस एयरपोर्ट पे उन्होंने वो सेंसर युक्त नल लगाया था। अभी देखो वो कहते हैं ना कि इंडियन टेक्नोलॉजी इज लाइक वेस्टर्न फिलोसफी, दैट जस्ट लाइक हाउ देयर फिलोसफी इज इन शैम्बल्स, अवर टेक्नोलॉजी मेनी टाइम्स इज लाइक। तो अभी वहां पर मैं हाथ धोने के लिए गया तो सेंसर में पूरा हाथ लगा दिया, पूरी हथेली दोनों लगा दी, पानी नहीं आए वहां पे। मैं अभी पूरा अंदर वॉश बेसिन के अंदर ही चढ़ने वाला था भैया कि तेरे को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दोनों हाथ आ गए हैं तो मैं ही अंदर छोड़ जाता हूं पूरा। तो मतलब वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि अगर आप खुद भी पूरे वॉश बेसिन पे चढ़ जाओ तो भी पानी नहीं आएगा। और हुआ क्या कि मैं पूरा हाथ इधर उधर सब जगह नल के, पता नहीं सेंसर पीछे होगा तो सब जगह पे लगा लिया, कुछ भी नहीं आया पानी। तो मैं जब जाने लगा तो तर्र पानी पीछे से चालू। तो इंडिया में अनसर्टेनिटी बहुत है ऐसे एक्सटर्नल, तो इसके वजह से प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी में जाते हैं हम लोग, है ना। कि जैसे मैंने एक बार प्रोएक्टिव का एग्जाम्पल दिया था कि आप टॉयलेट में हो और आपने अगर चेक नहीं किया है कि फ्लश में पानी है कि नहीं और नल में पानी है कि नहीं, बाल्टी भरी हुई कि नहीं, और पूरे कार्यक्रम के बाद में पता चले आपको, यू आर नॉट प्रोएक्टिव। बट वेस्ट में ये सब अनसर्टेनिटीज नहीं होती, बट स्टिल दे आर मोर इन एंग्जाइटी। पॉइंट क्या है, ऑन अ सीरियस नोट नाउ, ऑल्दो देर इज absolutely no external uncertainty over there. But they are more in anxiety. Why? Because of inner instability. जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं, समंदर में लहरें जो हैं वो आपको ऊपर नीचे फेंक रही हैं, वाइल्ड ओशन, टर्बुलेंट वेव्स, लेकिन आपके पास नाव है और नाव में आप बैठे हुए हो, तो नाव में आप बैठे हुए हो, लहरें वो नाव को यहां वहां फेंकेंगी परंतु आप गीले नहीं होंगे, आप हिलोगे यहां वहां नाव के हिलने के वजह से। तो ये जो इनर स्टेबिलिटी है ये उस नाव के समान है, ये भाव सागर जो है इसकी लहरें ऐसी उथल पुथल कर रही हैं हमारे जीवन में, परंतु यदि हमारे पास सत्संग की नाव है तो इस सत्संग की नाव में यदि हम बैठे रहेंगे तो चाहे बाहर की लहरें हमें कितना भी यहां वहां फेंके हम गीले नहीं होंगे। और इस सत्संग की नाव को यदि लंगर लगा दिया जाए, एंकर, तब तो फिर वो नाव भी हिलना बंद कर देगी। विच मीन्स सत्संग में आना नाव में बैठने के समान है, और सत्संग में आने के पश्चात उस सत्संग का लाभ लेना, अपने जीवन में उतारना लंगर लगाने के समान है। अन्यथा भव सागर की इन तरंगों से कोई बच नहीं पाएगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा हमारे देश में कि जब कोई कार नहीं चलती, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, इंजन ऑन नहीं हो रहा है, तो टिपिकल क्या जुगाड़ होता है हमारा, चार लोगों को पकड़ो, उनको कहो भाई लगा धक्का, पीछे से धक्का लगा, है ना। तो चार लोग धक्का लगाते हैं और ड्राइवर जो है वो फिर इग्निशन ऑन करना और एक्सलेटर दबाना, ये सब काम उसका अंदर से, वो तो अंदर से उसकी भी ड्यूटी है, बाहर से जो लोग धक्का लगा रहे हैं अंदर से इसकी भी ड्यूटी है। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम इस स्लाइड के संदर्भ में समझें कि हमारी गाड़ी धक्का स्टार्ट गाड़ी है, नहीं चल रही, इग्निशन इंजन विंजन सब कुछ नहीं काम कर रहा, तो फिर बाकी डिवोटीज आके हमारी साधना भक्ति की गाड़ी को धक्का लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग अंदर बैठे हैं, हमारी धक्का स्टार्ट गाड़ी है, पिछले आगे पीछे डिवोटीज हेल्प कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, हम अंदर से ब्रेक मार रहे हैं। तो इमेजिन करो, बेचारे बाहर से वो लोग अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं और अंदर बैठा हुआ ड्राइवर अगर ब्रेक लगाते रहे, ब्रेक लगाते रहे, तो क्या हाल होगा फिर। तो होता क्या है कि सारे डिवोटीज तो हेल्प कर रहे हैं, पूरी गुरु परंपरा है धक्का मारने के लिए हमें, हम चाहते भी हैं परंतु फिर भी आदत से मजबूर पैर बार बार ब्रेक पे जाता है, ब्रेक पे जाता है, ब्रेक पे जाता है। एक ये सिचुएशन है, इनर इंस्टेबिलिटी। तो एक आपको हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, ये एक दूसरी स्थिति है। कई बार हम लोग ऐसे संघ में रहते हैं जो ऐसे धक्का मारते हैं। वीडियो का मैसेज ये था कि ऐसे दोस्तों को मत रखो अपने पास जो आपकी गाड़ी को इस प्रकार का धक्का मारे कि गाड़ी खाई में। तो ये जो प्रसंग हम ले रहे हैं लक्ष्मण, इनका उदाहरण हम लेना चाहेंगे कि जब चित्रकूट पहुंचे सीताराम लक्ष्मण तो भरत वो निकले रामचंद्र जी को वापस ले आने का। और जो फेमस राम भरत मिलाप जो हुआ चित्रकूट में, तो लक्ष्मण वो पेड़ पर चढ़कर देखते हैं कि ये सेना की आवाज कहां से आ रही है, घोड़ों के चलने की भागने की आवाज कहां से आ रही है। तो पेड़ के ऊपर जाकर चढ़कर देखते हैं तो दूर से उनको दिखता है ये तो अयोध्या की सेना है और ये भरत का रथ है, उसका ध्वज है। तो लक्ष्मण तुरंत वो किस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये भरत अब यहां पर भी नहीं छोड़ रहा है हमको, उसको उसकी मां ने जो षड्यंत्र रचाकर उसको अयोध्या का राज दिया उससे तसल्ली नहीं मिल रही। आग बबूले लक्ष्मण उतरते हैं और राम को कहते हैं आप सीता मैया के साथ रहिए, मैं अकेले यहां पर चित्रकूट में जो नदी है गोमती उसके साथ खून की नदी बहा दूंगा, ये सारे सैनिक अयोध्या को खत्म कर दूंगा, पूरी सेना को और भरत को। रामचंद्र जी बोलते हैं जेनिफर रिलैक्स, हाँ ठंड रख पाजी, क्या हुआ? रामचंद्र जी बोलते हैं भरत उतना ही मुझसे प्रेम करते हैं लक्ष्मण जितना तुम करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि भरत आक्रमण करने के लिए आ रहा है? ये सोच है लक्ष्मण तुम्हारी। और फिर रामचंद्र जी व्यंग से लक्ष्मण को कहते हैं हो सकता है लक्ष्मण तुम शायद ये वन में परेशान हो रहे हो, अभी तो वनवास हमारा प्रारंभ हुआ है और मुझे ये लग रहा है कि शायद इस वनवास की जो कठिनाइयां हैं परेशानियां हैं वो झेली नहीं जा रही तुमसे, तो इसलिए तुम बिदक रहे हो, इसलिए तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ठीक है भरत आ रहा है, भरत रुक जाएगा, तुम चले जाना अयोध्या वापस। लक्ष्मण जब सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, और फिर जब राम भरत मिलाप होता है लक्ष्मण देखते हैं कि भरत क्यों आए थे रामचंद्र जी को वापस राजगद्दी देने के लिए, और आलिंगन करते हुए भरत को रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं, तुम क्या सोच रहे थे। और यहां देखो भरत का चरित्र। तो भरत को जब रामचंद्र जी क्या अपनी पादुकाएं देते हैं, अब यहां पर देखो स्पर्धा क्या चल रही है दो भाइयों के बीच में। जनरली दो भाई प्रॉपर्टी के लिए जो लड़ते हैं आजकल कलयुग में किस प्रकार की लड़ाई होती है, मुझे चाहिए वो सत्ता। यहां पर लड़ाई क्या चल रही है दोनों भाइयों के बीच में, आप लीजिए सत्ता, आप सब कुछ लीजिए, ये लड़ाई चल रही है। लुक एट द डिफरेंस। मतलब इमेजिन करो कि कलयुग में अगर एक भाई छोटे भाई को अपनी चप्पलें दे, ले ये है तेरा शेयर, जैसे रामचंद्र जी ने अपनी पादुकाएं दी, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी चप्पलें दे दें जायदाद में से तेरा हिस्सा ये मेरी चप्पलें, क्या करेगा वो छोटा भाई उठा के? मतलब क्या क्या लेवल है इनके कल्चर का। तो फिर जब भरत को रामचंद्र जी भेज देते हैं अपनी पादुका देकर, लक्ष्मण फिर आकर पूछते हैं रामचंद्र जी से कि मुझे इतना क्रोध क्यों आता है, मैं अपने क्रोध के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर काबू क्यों नहीं रख पाता? तो रामचंद्र जी वो लक्ष्मण से कहते हैं, क्योंकि तुम भावुक हो, यू आर लिटिल सेंटिमेंटल, राम लक्ष्मण को बोलते हैं। और फिर लक्ष्मण ये प्रश्न पूछते हैं, इज इट रॉन्ग टू हैव सेंटिमेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इज इट रॉन्ग टू हैव सेंटिमेंट्स? रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं, जब तुम्हारी भावनाएं वो तुम्हें धर्म के पथ पर ले जाएं, तो वो भावनाएं अनुकूल हैं। दो सेंटिमेंट्स विच टेक्स यू टूवर्ड्स धर्म, ऑन द पाथ ऑफ धर्म, दो सेंटिमेंट्स आर वेलकम्ड, शुड बी वेलकम्ड। परंतु जो भावनाएं तुम्हें धर्म के पथ से दूर ले जाएं, वो भावुकता है। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने जो एक एनसाइक्लोपीडिक ज्ञान दिया है भक्ति का, वो किसी शास्त्र में नहीं मेंशन्ड है। जितनी बारीकी से रूप गोस्वामी ने भक्ति का ज्ञान, स्पेशली हमारे अलग अलग इमोशंस, भावनाएं भगवान के प्रति एक भक्त कैसे व्यक्त कर सकता है, उसका जो निरूपण दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो अप्रतिम है। तो इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति रसामृत सिंधु की रचना रूप गोस्वामी ने एक और ग्रंथ के साथ करी, उज्ज्वल नीलमणि। बहुत हाई लेवल का ये ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, हमारे लिए भक्ति रसामृत सिंधु वो भी बहुत हाई है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें रूप गोस्वामी ने दो ट्रेडिशंस लिए हैं। उन्होंने ये वर्ड यूज किया है रस, भक्ति रस अमृत सिंधु। रस ये जो वर्ड यूज किया है भक्ति के संदर्भ में, तो एक रस ट्रेडिशन है और एक भक्ति ट्रेडिशन। तो ये जो रस ट्रेडिशन है, ये रूप गोस्वामी ने लिया नाट्य शास्त्र से। हमारे जो अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, उसमें से एक बहुत प्रमुख शास्त्र है भरत मुनि द्वारा दिया गया नाट्य शास्त्र। अच्छा, ये नाट्य शास्त्र की रचना कैसे हुई? एक दफा सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से याचना करी कि आप हमें एक ऐसा मनोरंजन की विधि बताइए जो कि शिक्षा प्रद हो, दैट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विच शुड बी एनलाइटनिंग एंड अपलिफ्टिंग, शिक्षा प्रद मनोरंजन। तब ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र दिया, ये जो आजकल नाट्य जिसको बोलते हैं, कला केंद्र और बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी कुछ, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जब ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र दिया और भरत मुनि ने, बहुत से इसके पश्चात हुए जो जिन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर उस पर उसको और इलैबोरेट किया, जैसे अभिनव गुप्ता, रूप कविराज इत्यादि, इन्होंने इसको बहुत इलैबोरेट किया। लेकिन ओरिजिनली ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया, भरत मुनि के द्वारा जो आचार्य रहे नाट्य शास्त्र के। तो नाट्य शास्त्र में क्या है कि जब जो किरदार किसी पर्टिकुलर इमोशन को ऑडियंस के अंदर, जो जनता देख रही है उस नाटक को, उनके अंदर एक इमोशंस को जागृत करना चाहते थे, तो वो नाट्य के द्वारा जागृत करते थे और वो परमानेंटली रहते थे उनके अंदर वो इमोशंस। दे वुड ऑलवेज रिमेंबर कि क्या इमोशंस उस पर्टिकुलर किरदार ने मेरे अंदर जागृत किए। तो रूप गोस्वामी ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लिया क्योंकि नाट्य शास्त्र में रस की विवेचना होती है और उसको देखने वाले जो हैं उनको रसिक बोला जाता है। जैसे कि ऑडियंस जो है उनको भी जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको हिंदी में कह रहा हूं, ये पूरा प्रवचन हिंदी में है, तो आपने हिंदी भाषा सीख रखी है इसलिए आपको समझ में आ रहा है, तो आपने भी तो होमवर्क किया है। ये पूरे परफॉर्मेंस को कंप्लीट होने के लिए आपकी तरफ का योगदान क्या है? आपको ये भाषा आती है तो मेरे को हर बार हर एक वर्ड का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही नाट्य शास्त्र में रसिक जो हैं वो रस को पकड़ते हैं नाट्य के। जैसे अगर भरतनाट्यम कोई स्त्री कर रही है स्टेज के ऊपर और दामोदर लीला भरतनाट्यम के द्वारा वो प्रदर्शित कर रही है, तो जो ऑडियंस है उसको दामोदर लीला मालूम होनी चाहिए, तो वो जो एक्सप्रेशंस करेगी जो नर्तकी है वो जो एक्सप्रेशंस करेगी, ऑडियंस जो है वो रसिक हैं तो वो उसके एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि ये कृष्ण के एक्सप्रेशन है, ये यशोदा माई के एक्सप्रेशन है। इसको बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रसा एंड रसिक। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने अब ये जो 64 अंग हैं जिसके अंदर इतना डिटेल में रूप गोस्वामी ने सब कुछ मेंशन किया है कि आपको भगवान के मंदिर में अर्च विग्रह के सामने अपने आप को कैसे पेश करना चाहिए, सब कुछ जो दिया है। आपको पता है रूप गोस्वामी ने ये कहां से 64 आइटम्स कहां से लिए? ये किसी शास्त्र से नहीं लिए, रूप गोस्वामी ने ये 64 आइटम्स सनातन गोस्वामी को ऑब्जर्व कर लिखे हैं, उनके बड़े भाई। ही सिंपली ऑब्जर्व सनातन गोस्वामी एंड रोट एवरीथिंग। और फिर भक्ति शास्त्र को कंबाइन किया, नाट्य शास्त्र और भक्ति शास्त्र को जो उन्होंने कंबाइन किया उससे बना भक्ति रसामृत सिंधु। क्योंकि रूप गोस्वामी इसके अंदर वो हम सबको रसिक बनाना चाहते हैं और ऐसे डिटेल्स जो उन्होंने दिए हैं वो आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं तो केवल आपको एक ट्रेलर दे रहा हूं। तो रूप गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ में रस, भक्ति का जो रस है उसको जागृत करने के लिए सबसे पहले उद्दीपन, हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उद्दीपन कैसे जागृत हो इसकी विवेचना की। तो उद्दीपन से रस, अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया है मेलो, उद्दीपन का ट्रांसलेशन है स्टिमुलस, और उसके पश्चात भावनाएं हमारी, जैसे कि हम लोग किस में हैं, कृष्ण भावना मृत संग में हैं। सो स्टिमुलस गिव्स राइज टू मेलोज, मेलोज गिव्स राइज टू इमोशंस, और आज हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हमारी भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर वृंदावन में उद्दीपन ब्रजवासियों के अंदर कब देखा जाता था, कैसे देखा जाता था? शाम के समय जिसको बोलते हैं गोदुली बेला, जब संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों को बछड़ों को लेकर आते थे फिर वृंदावन में, तो वो जो बेला है गोधूली बेला, उस बेला की प्रतीक्षा में सारी गोपियां दिन भर रहती थी। तो अब वो लोग देख रहे हैं, सारी गोपियां देख रही हैं कि जो धूल उड़ती हुई दिख रही हैं, जिस दिशा से भगवान कृष्ण बलराम आने वाले हैं, सबसे पहले उड़ती हुई धूल, और ये कौन सी है उड़ती हुई धूल, जो गायों के खुरों से धूल उड़ रही है, ब्रजरज उड़ रही है, उस ब्रजरज उड़ती हुई ब्रजरज को ये लोग देखते हैं। तो उद्दीपन, इनके अंदर कृष्ण को देखने की जो लालसा है वो भावनाओं का उद्दीपन प्रारंभ होता है। किसको देखकर? ब्रजरज उड़ती हुई को देखकर। और फिर क्योंकि भगवान सबसे पहले अपने गैयों को आगे रखते हैं तो गैया दिखती है उनको, तो गैया दिख गई मतलब इसके पीछे कृष्ण बलराम हैं, फिर उसके पीछे ग्वाल सखा, फिर एंड में कृष्ण बलराम का दर्शन इन गोपियों को होता है। लेकिन इसकी शुरुआत उनके मन में कहां से होती है, जैसे ही वो ब्रजरज उड़ती हुई वो देख लेते हैं यशोदा माई। यशोदा माई का उद्दीपन प्रारंभ होता है उड़ती हुई ब्रजरज को देखकर, उसके पश्चात जब वो कृष्ण को देख लेती हैं तो वो उद्दीपन सेकंड लेवल पर जाता है, सेकंड लेवल पर उनका उद्दीपन जाता है, किनका, यशोदा माई का। और जब भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए यशोदा माई के गोद में यशोदा माई को आलिंगन देते हैं तो वो उद्दीपन का हाईएस्ट लेवल यशोदा माई पहुंचती हैं उस पर। तो ये उनके उद्दीपन के लेवल्स बताए हैं। अब हमें क्या समझना है इसमें कि हमारे जीवन में उद्दीपन कहां कहां है। जैसे कि हमारी सिचुएशन क्या है, रास्ते में कोई कांदा भजी तल रहा है, उद्दीपन हो जाता है, पुराने हमारे रस, कांदा भजी के रस और भावनाएं उद्दीपित होते हैं। फिर तो इतना हम दर्शन लेना, चैंटिंग करना, सुनना, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसे माहौल में नहीं रहेंगे तो जब हम भगवान श्री राधा मदन गोपाल या भक्ति के अंगों के संदर्भ में कुछ देखेंगे तो क्या हमारे अंदर उद्दीपन जागृत होगा कि नहीं। अजामिल के अंदर कामवासना थी, इसलिए अजामिल ने जब उस वैश्या को और उस शूद्र को देखा तो अजामिल के अंदर उद्दीपन से क्या जागृत हुआ, कामवासना जागृत हुई। भरत महाराज के अंदर करुणा थी, तो जब उन्होंने उस हिरण को देखा असहाय अवस्था में तो भरत महाराज के अंदर उस हिरण के बच्चे ने उद्दीपन जागृत किया, किसके, करुणा का। तो हमें क्या देखना है कि हमारे अंदर वो कौन सा स्टिमुलस हम कॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं कि जहां कहीं पर भी हम रहें हम कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में उद्दीपित रहें। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो इनके संदर्भ में कर्म या कर्मकांड में दे वॉन्ट टू हैव इमोशंस बट दे वॉन्ट टू एंजॉय दोज इमोशंस फॉर देमसेल्व्स, देयरफॉर दे रोमांटिसाइज देयर इमोशंस। इन ज्ञान सारी भावनाओं को मार डालना है, कोई भावना होनी नहीं चाहिए, न रहेगी भावना, न रहेगा कोई उद्दीपन, न रहेगी कोई समस्या, दे डिमनाइज द इमोशंस। बट इन भक्ति वॉट आर वी बींग टॉट, रूप गोस्वामी क्या सिखा रहे हैं हमको, यूटिलाइज द इमोशंस, डोंट रोमांटिसाइज, डोंट डिमनाइज, बट यूटिलाइज द इमोशंस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स यूटिलाइजिंग इमोशंस, यूटिलाइजिंग इमोशंस मीन्स बींग अवेयर ऑफ आर थॉट्स। अब ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हर समय हम या हमारा जो मन है ये इसमें फेल होता है। किस चीज में फेल होता है, अवेयरनेस। जैसे कि इस समय हमारा मन जो है वो हमको कितने अलग अलग एरियाज में ले जाता है, एक सेकेंड में, एक मिनट में। जैसे हम क्या चर्चा कर रहे थे, पेंडुलम, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। तो आज हम एक एक्सरसाइज करना चाहेंगे मिलकर, बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज रहेगी, और ये एक्सरसाइज है हाउ टू गिव मेंटल डिक्टेशंस टू योर माइंड. क्या है? मेंटल डिक्टेशंस टू योर माइंड. हम लोग अक्सर ये जो क्वेश्चन हर समय पूछते हैं कि चैंटिंग करते समय या दर्शन लेते समय, हियरिंग के समय, श्रवण के समय, ये मन हमारे साथ क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम हमारे माइंड को डिक्टेट ही नहीं करते. जैसे कि कोई मूवी देखने गया है. अब देखो, हम सब ने इसका अनुभव किया होगा पहले कि आप मूवी देख रहे थे और वहां पर जिसने वो मूवी बनाई है, डायरेक्टर ने, वो डायरेक्टर कैमरामैन को बोलता है कहां कहां तुम कैमरा फोकस करो, और कैमरामैन जहां पर फोकस करता है, जो दर्शक है, ऑडियंस है, उसका माइंड भी उस कैमरे के साथ वहां पर फोकस करता है. जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सीन है, विलन ने हीरो की मां को अगवा कर लिया है, हाँ, किडनैप करके अपने घर में बांध दिया, बेसमेंट में. हीरो जो है वो अपनी मां को खोज रहा है और उसे पता चल गया कि कौन से घर में, ये नहीं पता है कि घर में कहां पर मेरी मां बांधी हुई है. विलन जो है उसकी मां को बांध के बाहर जाता है कुछ खाना खरीदने के लिए. तो अभी डायरेक्टर क्या करता है, कैमरा बाहर ले गया है, विलन बाहर गया है, हीरो के पास 10 मिनट है केवल अपनी मां को छुड़वाने के लिए, है ना, याद है ऐसे सीन्स. तो वो कैमरा कहां ले जाता है, कभी कैमरा, विलन बाहर है, वो खरीद रहा है, यहां पे इसने एंट्री करी है, 5 मिनट हो गए हैं, वो रास्ते में लौट रहा है. अभी आप लोग देख रहे हैं, कैमरा दोनों दिखा रहा है, वो लौट रहा है, ये ढूंढ रहा है अपनी मां को, वो लौट रहा है, ये ढूंढ रहा है, कैमरा दिखा. आपका माइंड कहां कहां जा रहा है? बाहर सड़क पे भी जा रहा है जहां कैमरा, डायरेक्टर आपके माइंड को ले जा रहा है. बेसिकली डायरेक्टर क्या कर रहा है, आपके माइंड से खेल रहा है ना. न तो कोई सड़क होगी, न कोई ऐसा चीज होगा, लेकिन आपका माइंड, एक मिनट विलन जो सड़क पे से आ रहा है वापस, उसके ऊपर जा रहा है. हीरो जो बेसमेंट में मां को ढूंढ रहा है उसके ऊपर है. उसके बीच में पुलिस अगर कहीं है, पुलिस निकल चुकी, तो माइंड वो उसके ऊपर भी कैमरा फोकस कर दिया. बेसिकली हमारे माइंड के अंदर इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आप जिस पर फोकस करोगे माइंड वहीं पर टिका रहेगा. पॉइंट ये है, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ व्हाट टू फोकस, वी फाइंड अवर माइंड गोइंग. कैमरा ऐसे अगर कोई हिला रहा है इधर उधर, तो क्या होगा, कभी ये दिख रहा है, कभी वो दिख रहा है, पूरा कंफ्यूज. तो ये सिचुएशन हमारी होती है. लेक्चर में बैठे हैं, अपने माइंड को डायरेक्ट करने के बजाय हम माया देवी को डायरेक्टर बना देते हैं अपने माइंड का. तो माया देवी क्या करती है, हमारे माइंड को लेखती है, और माया देवी माइंड को कभी कैमरा लेके माइंड को क्या दिखाती है, देख यहां पे स्क्रीन पे देख, हाँ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीन के साइड में देख अब. तो हम लोग फिर माया जो डायरेक्टर बनी हुई है साइड में देखते हैं, अच्छा हाँ ये तो देख लिया, दर्शन आज का ही है, अब पीछे मुड़ देख, फोन निकाल, फोन में देख मैसेज आया है, हाँ बाहर देख काउंटर भी लग रहा है. तो ऐसे करके हम लोग, शरीर बैठा हुआ है इधर, लेकिन माया देवी जो डायरेक्टर बनी हुई है हमारे माइंड का, माया देवी हमको एक मिनट में कहां से कहां घुमाती रहती, घुमाती रहती, घुमाती रहती. बेसिकली आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे, मैं डिक्टेटर बनूंगा, आई विल डिक्टेट योर माइंड, है ना. जैसे होता ना हिप्नोसिस, हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है, वो जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो डिक्टेट करता है, इसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन. तो आज हम लोग एक गाइडेड मेडिटेशन के टूर पर जाएंगे, और कहां जाएंगे, श्री वृंदावन धाम जाएंगे. तो आपको करना क्या है, मैं जो आपको डिक्टेशंस दूंगा, आपको आपके आंखें बंद कर कर उस डिक्टेशंस को फॉलो करना है। तो हम आज हमारे मन के रथ पर बैठेंगे, मंगला में नहीं, मन के रथ पर बैठकर वृंदावन जाएंगे। हाँ, रेडी? और किसी को भी आंखें खोलनी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप वही रहेंगे, आप किसी दूसरे आपके जन्म में नहीं जाने वाले। इनफैक्ट अगर इस मेडिटेशन के दौरान, मैं तो ये सोचूंगा कि अगर मेरे प्राण भी चले जाएं ऐसे मेडिटेशन में कि वृंदावन धाम पर मेडिटेट करते हुए, तो इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा समय, इससे अच्छा स्थान और कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज डोंट ओपन योर आईज, जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस वन कंडीशन, आपको आपकी आंखें नहीं खोलनी है। और इस गाइडेड मेडिटेशन से आपको अपने आप को श्री वृंदावन धाम में पाना है। जैसे कि हमारा मन, हालांकि शरीर बैठा हुआ है लेकिन मन उठाकर कहीं अपने को पटक देता है, हमको अब क्या करना है, कॉन्शियसली वी हैव टू टेक आवरसेल्व्स टू श्री वृंदावन धाम। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू राइट नाउ, नो चीटिंग, क्लोज योर आईज, बैक इरेक्ट, सीधा बैठिए और धीरे धीरे मैं जो आपको डिक्टेट करूंगा, आपको फोकस करना है मेरे डिक्टेशंस पे। तो आंखें बंद आपकी और आप श्री वृंदावन धाम में जमुना के तट पर हो और सुबह 6:30 का समय है, जहां पर बहुत ही मंद हवा चल रही है जमुना के तट पर। और ऐसे ही जमुना के तट पर जो सबसे मुलायम नर्म ब्रजरज है, उस ब्रजरज के संपर्क में ऐसी मंद जमुना जो बह रही है, उस कलकल करती जमुना के बहती नदी की आवाज आपको सुनाई दे रही है। और उस दौरान आपने आपके मन में वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़ियां चहक रही हैं, उनकी आवाज आपने सुनना प्रारंभ किया है। और उसके साथ ये जो पक्षियों की आवाज चहक रही है, मोर की आवाज, आप धीरे धीरे मोर की आवाज भी सुनोगे। और आपने फोकस किया है कि ये मोर जो आपने कभी वृंदावन में देखा होगा, चिड़ियों को आपने सुना होगा, और चिड़ियों को और मोर को आपने भगवान श्री कृष्ण की किसी लीला के संदर्भ में सुना या देखा होगा। और ऐसे ध्यान में आप कल्पना कर रहे हो कि आपके चारों ओर ये वृंदावन का वातावरण, ये मोर, ये चिड़ियों की आवाज, ये जमुना और एक कीर्तन आपको अब सुनाई दे रहा है बांसुरी की आवाज के साथ।
चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुमिनियो हेनियो चितनंदन तुमिनियो हेनियो चितनंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मन हारी सुंदर है मन हारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहो निशीदे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण अब प्रेम प्रदीपे आरती तो मां प्रेम प्रदीपे आरती तो मां नयन जमुना झरे अनिबा नयन जमुना झरे अनिबा तुमार विरह गिरिधारी तुमार विरह गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहो निशीदे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण
हरी बोल।
कैसा लग रहा है? हमने एक नमूना आपके सामने पेश किया. हम सब के अंदर हमारे मन को काबू रखने की शक्ति है. यहाँ पर इतना अरेंजमेंट हमने जो किया इस म्यूजिक के साथ, इस डिक्टेशन के साथ, इसको बोलते हैं हाउ टू बी अवेयर ऑफ योर माइंड. तो जब हम हमारे माइंड को डिक्टेट करते हैं वो उस दिशा में जाएगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा. तो यदि हम डिसाइड करते हैं कि मैं श्री वृंदावन धाम के कॉन्शियसनेस में रहना चाहता हूं, तो अभी ये 5-10 मिनट में जो हमने अनुभव किया इसको हम 5 घंटे, इसको हम पूरा दिन, और इस कॉन्शियसनेस को हम निरंतर बना सकते हैं यदि हम हमारे उद्दीपन को उस रस से और उन भावनाओं से जोड़ें. तो इसलिए ये बहुत सुंदर राधानाथ महाराज के इंस्ट्रक्शंस हैं हाउ टू कीप द माइंड स्टेडी ड्यूरिंग मेडिटेशन.
द नेचर ऑफ द माइंड इज लाइक अ मंकी. It jumps from branch to branch. And sometimes it goes to one branch and then it jumps to the next branch and then it jumps to this, the other branch and then the branch it used to be on. But if you give the monkey a nice ripe banana, then the monkey will be happy. Giving the mind a more deep and fulfilling spiritual experience by keeping it focused. We may not get that higher taste immediately, but we know it's there. Just like if the monkey has a banana, it'll stop jumping from branch to branch, but still it has to go through the sadhana of peeling the banana. It doesn't get the taste of it immediately. So sadhana is like peeling the banana, but we know it's there. And just knowing it's there and keeping our mind focused on the process, then our mind is steady.
Vishayani vartate niraharasya dena rasavarjam nisokyasya param drishtvani vartate.
So hamare aaj ke session ka conclusion hai, Krishna consciousness begins by being aware of one's present consciousness. हमारे बचपन में हमको एक poem थी स्कूल में इसी संदर्भ में, to be present, to be aware of our thoughts, of our consciousness. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here. आप लोग को ये poem थी, मेरे पीछे repeat कीजिए. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here. Here, thank you very much. Hare Krishna. Hare Lord. तो ये बहुत important lesson अयोध्या के इन मैसेंजर्स ने हमको आज सिखाया. बी इन द प्रेजेंट. किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.